नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से बातचीत की। कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवाओं के 942 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताबी मुकाबला मौजूदा चैंपियन अरेना सबलंका और मेडिसिन कीज के बीच अब से कुछ देर बाद। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। भारत और इंडोनेशिया ने आज स्वास्थ्य सहयोग, परंपरागत चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और डिजिटल विकास के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तीसरे भारत इंडोनेशिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय और शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद अपने प्रेस वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला में मिलकर काम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरता से निपटने में सहयोग पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है।
फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में हमने आपसी सहयोग को और सशक्त करने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस और स्टेम एजुकेशन के क्षेत्रों में भी साथ मिलकर काम किया जाएगा।
श्री मोदी ने कहा कि रामायण और महाभारत से प्रेरित कथाएं और बाली यात्रा दोनों देशों के लोगों के बीच अनंत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का जीवंत प्रमाण है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा में उन्हें दिए गए अपार सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। श्री सुबियांतो ने कहा कि उन्होंने साझा हितों के कई प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की, जिसमें दोनों पक्ष सहयोग के स्तर को बढ़ाना चाहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का औपचारिक स्वागत किया। इस अवसर पर श्री सुबियांतो ने इस बात पर जोर दिया कि इंडोनेशिया भारत को अपना घनिष्ठ मित्र मानता है और भारत इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
इंडोनेशिया कंसीडर्स इंडिया वेरी ग्रेट फ्रेंड। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज आवर इंडिपेंडेंस। आई एम रियली ऑनर्ड टुडे दैट टुमारो आई विल बी द चीफ गेस्ट एट योर रिपब्लिक डे परेड।
औपचारिक स्वागत के बाद श्री सुबियांतो ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से इसका प्रसारण करेगा। आकाशवाणी या दूरदर्शन कल कर्तव्य पथ से 76वें गणतंत्र दिवस परेड का सीधा प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आकाशवाणी का प्रतिष्ठित और चर्चित कार्यक्रम सर्वभाषा कवि सम्मेलन का प्रसारण आज 10:00 बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवाओं के कुल 942 कर्मियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। एक रिपोर्ट।
इनमें से 95 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। ये पदक जीवन, संपत्ति बचाने, अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में वीरता और विशिष्ट कार्य के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा 101 विशिष्ट कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 746 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक मिला है। भानु और अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर समाज के लिए अच्छा काम करने वालों को सम्मानित करने के लिए कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंजाब समेत देश भर से 10,000 से लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
इस सम्मान को पाने वालों में लुधियाना की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करमजीत कौर, श्री मुक्तसर साहिब की झींगा किसान रुपिंदर कौर और पटियाला के वन्य जीव संरक्षण अधिकारी अमरजीत सिंह शामिल हैं।
26 जनवरी दिन भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा मेनू सम्मानित किया जा रहा है। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ PMSY ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਈਲਡ ਸਨੇਕਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਕੇ ਸਮਰਪਣ ਕੋ ਦਰਸਾਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਕੀ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੋ ਵੀ ਬੜਾਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਲੀ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ।
ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਹਮਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.newsonair.gov.in ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਐਪ ਪਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि यह गौरव का विषय है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा विविध युवा समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र है। नई दिल्ली में आज 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और देश में प्राचीन समय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया विद्यमान है। उन्होंने कहा कि आधुनिक विश्व के लिए भारत का लोकतंत्र अनूठा उदाहरण है।
हमारे लोकतंत्र विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र होने के साथ साथ विश्व का सबसे विशाल, विविधतापूर्ण, युवा, समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र भी है। निर्वाचन आयोग के प्रबंधन, मतदाताओं की भागीदारी, सुरक्षा कर्मियों तथा इलेक्शन मशीनरी में सहयोग देने वाले नागरिकों के बल पर भारतीय लोकतंत्र द्वारा जिस विशाल पैमाने पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं वो पूरे विश्व में अतुलनीय है।
विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सराहना की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि भारत में अब मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ से अधिक है।
आज जब हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे देश में मना रहे हैं, मुझे बताते हुए खुशी है कि जनवरी 2025 में आज देश में वोटर्स की संख्या 99 करोड़ के पार कर गई है। वी आर गोइंग टू बी द नेशन ऑफ 1 बिलियन वोटर्स वेरी सून। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इन्हीं 99 करोड़ मतदाताओं को समर्पित है।
कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए राज्य जिला अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ चुनावी कार्य पद्धति पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिवस भारत के जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाने और प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस वर्ष जून तक 360 से अधिक जीवंत गांवों में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी जाएगी। श्री शाह ने कल 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज नई दिल्ली में जीवंत गांवों से आए विशेष अतिथियों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 662 जीवंत गांवों में से 474 गांवों का ऑन ग्रिड विद्युतीकरण होगा और 127 गांवों का ऑफ ग्रिड विद्युतीकरण किया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय समारोहों में इन लोगों को आमंत्रित करने से सरकार अंतर को पाट रही है और इन्हें मुख्य धारा में ला रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, जुएल ओराम, किरेन रिजिजू और नित्यानंद राय भी उपस्थित थे। वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितता के मद्देनजर सहयोग बढ़ाने के आह्वान के साथ दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक सम्पन्न हो गई है। समापन भाषण के मंच के अध्यक्ष बुर्गे ब्रेंड ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और संघर्षों को समाप्त करने के तरीकों को खोजने जैसी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्राथमिकताओं पर तत्काल ध्यान देने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सेना के जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि गोलीबारी के बाद आतंकवादी भाग गए। आतंकियों की तलाश के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। कठुआ जिले की बटोद पंचायत में सेना के अस्थायी शिविर के पास रात 1 बजे के बाद संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी का पता चलने पर जवानों ने उन पर गोलियां चलाईं। इसके बाद आतंकवादियों ने भी गोलीबारी की। सेना ने घेराबंदी कर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट।
भारत पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। उस पर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। राणा का कथित तौर पर संबंध हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक पाकिस्तानी अमरीकी आतंकवादी डेविड कॉलमैन हेडली से है। 64 वर्षीय राणा इस समय लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में कैद है। समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी,
ये आकाशवाणी है। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज के महाकुंभ में आयुष मंत्रालय श्रद्धालुओं और आगंतुकों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक 1,21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आयुष सेवाओं का लाभ उठाया है।
आयुष मंत्रालय महाकुंभ में देश और विदेश से आए श्रद्धालुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। 80 डॉक्टरों की टीम 20 ओपीडी के माध्यम से 24 घंटे लगातार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। विदेशी श्रद्धालु भी ओपीडी परामर्श सहित आयुष सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। वहीं बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए आयुष डॉक्टरों की एक टीम समर्पित है। इसके अलावा संगम क्षेत्र में निर्धारित स्थानों में प्रतिदिन सुबह के समय मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के प्रशिक्षकों द्वारा योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इन सत्रों में अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं की भागीदारी, स्थानीय और वैश्विक जनता के बीच आयुष सेवाओं में बढ़ती रुचि और विश्वास को दर्शाती है। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
वरिष्ठ लेखक और सेवानिवृत्त न्यायाधीश नरेंद्र चपलगांवकर का आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उनके निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के अलग अलग इलाकों और अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में शीतलहर का अनुमान जताया है। वहीं बिहार में कल तक ठंड बने रहने की संभावना है। इसके अलावा कल तक उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रात और सुबह के समय घना कोहरा रहने का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज चेन्नई में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन बेलारूस के अराइना सबालेंका का मुकाबला अमेरिका की मेडिसन क्रीज के साथ हो रहा है। पुरुष डबल्स के फाइनल में आज ही ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हलियावोरा की जोड़ी का सामना इटली के साइमन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी की जोड़ी से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से बातचीत की। कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवाओं के 942 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताबी मुकाबला मौजूदा चैंपियन अराइना सबालेंका और मेडिसन कीज के बीच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।